ओम अज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। सभी जो भी सिंसियर श्री प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, इवेंचुअली जब जैसे जैसे हम पुस्तक कंप्लीट करते जाएंगे, आपको लगेगा कि जितने भी आध्यात्मिक डाउट हैं वो सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं शास्त्रों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने से। और मैं ये स्क्रीन शेयर करना कर रहा हूँ, तो इनकेस अगर कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। स्क्रीन शेयर करके जो नोट्स हैं उसमें से हम डिस्कस करेंगे, और इवेंचुअली क्योंकि लास्ट वीक जब हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए थे तो मुझे लगा था थोड़ी ज्यादा स्पीड में हमने डिस्कस किया था, 1 घंटे में 5 चैप्टर, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि 3 चैप्टर के बाद हम क्लास रखेंगे जिससे कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स को ठीक से डिस्कस किया जा सके। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, तो वी कैन स्टार्ट नाउ। दिस जस्ट अ मिनट शिवम, आप एक बार देखेंगे स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेयर किया वो दिखाई दे रहा है?
यस सर, ये मैचलेस गिफ्ट्स एंड वो सामने स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्णा।
ओके ओके, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है मैचलेस गिफ्ट, मैं जस्ट आज कई बार मैं इस चीज को बता चुका, मैचलेस गिफ्ट जो है वो मेरी भी पहली पुस्तक थी जब मैं कृष्ण भक्ति में आया था करीब 15 साल पहले। तो ये पुस्तक मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, सबसे पहले मुझे ये पुस्तक दी गई थी, इसलिए ये पुस्तक मेरी वन ऑफ द फेवरेट पुस्तक है। अभी भी मैं इस पुस्तक को कई बार पढ़ता हूँ, बहुत अमेजिंग पुस्तक है। क्योंकि मैचलेस पुस्तक श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक पहली बार जो मंदिर खोला था न्यूयॉर्क में, जो पहला मंदिर खोला था, तो उस मंदिर के लिए वो जगह जब ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक मैचलेस गिफ्ट स्टॉल को देखा। मैचलेस गिफ्ट एक स्टॉल थी जहां पे गिफ्ट आइटम रखे रहते थे, तो वो दुकान खाली हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने उसी दुकान को रेंट पे लिया। और जब मैचलेस गिफ्ट का ऊपर वो लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था दुकान के ऊपर, तो वो बैनर हटाने लगे तो प्रभुपाद जी ने बोला एक्चुअली इस बैनर को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताने जा रहे हैं वो भी एक मैचलेस गिफ्ट है, तो ये बैनर हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस्कॉन का जो पहला मंदिर था वो मैचलेस गिफ्ट के नाम से, उसके बैनर के नाम से खुला था। तो ये अनुपम उपहार, हिंदी में इसका नाम अनुपम उपहार है। और मैंने जब कृष्ण भक्ति के संपर्क में आया तो इस पुस्तक के जो चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे लगे थे, बहुत कई बार मैंने उन चैप्टर्स को पढ़ा, बहुत इंस्पिरेशन भी मिला। तो आज हम इनिशियल 3 चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्ण, कृष्ण के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान। ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि कृष्ण हमारा आइडेंटिटी क्या है और किस प्रकार से कृष्ण के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा चैप्टर है गेटिंग आउट ऑफ द मटेरियल माया, भौतिक संसार से कैसे निकले। तीसरा चैप्टर है उस प्रोसेस को डिटेल में बताया है, लर्निंग टू लव। तो हम सीक्वेंशियली जाएंगे, जैसे पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में हम देखते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्ण। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट सेक्शन, इस चैप्टर को पांच भागों में, पांच मेन थीम है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर ही चालू होता है एम ऑफ कृष्णा कॉन्सियस मूवमेंट। ये मैंने नोट्स के रूप में इसलिए बनाया है जिससे आप लोग भी जो इम्पोर्टेंट थीम्स और नोट्स हैं वो आप इसको कवर कर सकें जब आप स्टडी करते हैं या इवेंचुअली जब आप नोट्स बनाएंगे तो इन चीजों को आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये पुस्तक प्रारंभ होती है, पहले चैप्टर में ही बताया जाता है कृष्ण कृष्ण भक्ति की जो संस्था है कृष्णा कॉन्सियसनेस मूवमेंट, इस मूवमेंट का उद्देश्य है कि लोगों को उनकी वास्तविक चेतना में वापस लाया जाए, रिवाइवल ऑफ ओरिजिनल कॉन्सियसनेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज। ये इस किताब के पहले पेज में भी दिखाई देता है, फर्स्ट चैप्टर में इस प्रकार से दिखाई देता है कि किस प्रकार से जीव का चेतना रिवाइव करना चाहिए। द एम ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस मूवमेंट इज टू ब्रिंग ऑल लिविंग एंटिटीज बैक टू देयर ओरिजिनल कॉन्सियसनेस। और फिर इस सेक्शन में बताया जाता है कि किस प्रकार से सभी के सभी जीव जो हैं इस भौतिक संसार में एक पागलपन में है। पागलपन का मतलब लिटरल पागलपन नहीं बोला जाता है, परंतु पागलपन का मतलब कि उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता नहीं है। तो उस सेंस में यहाँ पे पागलपन डिनोट किया गया है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से पूछें, कोई व्यक्ति इस मीटिंग में आता है या इस क्लास में आ रहा है और मैं किसी से उस व्यक्ति से पूछूं कि आप ये 1 घंटे पहले कहाँ थे, और वो व्यक्ति बोले कि मुझे तो पता नहीं 1 घंटे पहले मैं कहाँ था। इसी तरह से अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आप 1 घंटे बाद कहाँ रहेंगे और वो व्यक्ति बोले नहीं मुझे वो भी नहीं पता, तो फिर हमें लगेगा इस व्यक्ति के दिमाग के स्क्रू में कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग का स्क्रू ढीला है, ऑलमोस्ट उसको पागल जैसे मानते हैं। इसी तरह से अगर हम पूछें कि इस संसार में जन्म होने के पहले आप कहाँ थे, तो लोग बोलते हैं पता ही नहीं, मरने के बाद कहाँ जाने वाले हैं, कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया। तो वास्तविकता में जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं या आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार से बताया जाता है कि अलग अलग प्रकार से भूलेपन में है। जैसे पागल व्यक्ति वास्तविकता को भूल जाता है, उसी प्रकार से सामान्यतः इस संसार में जो लोग हैं अपनी आध्यात्मिक चेतना को भूल जाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति जो है वो उस व्यक्ति के इस भौतिक दुख, भौतिक जो बीमारी है उसको दूर करके अपनी वास्तविक आध्यात्मिक चेतना में लाने के लिए। और इसके आगे बताया जाता है कि तुलना की गई है, देयर इज अ कंपैरिजन दैट द पर्सन व्हेन ही इज हॉन्टेड बाय द घोस्ट ही स्पीक्स नॉनसेंस। जब किसी को भूत लग जाता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको भूत पकड़ते हैं जब, तो नॉनसेंस चीजें बोलना चालू करता है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति भौतिक संसार के नियंत्रण में है और शारीरिक चेतना में है, ऐसा समझा जाता है कि वो हॉन्टेड व्यक्ति के समान है। हो सकता है वो बहुत बड़ा फिलोसोफर हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, पर वो माया शक्ति या इल्यूजन शक्ति के द्वारा हॉन्टेड है, उसी तरह से जैसे कोई घोस्ट के द्वारा हॉन्टेड होता है। तो इसीलिए ये कृष्ण भक्ति का जो कृष्ण भक्ति की संस्था जो है, इसका ये कर्तव्य है कि किस प्रकार से व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना में लाया जाए जो कि कृष्ण चेतना है। और जैसे आकाश से जब बूंदे निकलती हैं, पानी की बूंदे जब गिरती हैं जमीन पे, तो वो बहुत प्योर होती हैं, परंतु जमीन के संपर्क में आते ही साथ वो कंटेमिनेटेड हो जाती हैं। उसी प्रकार से जैसे रेन वाटर जो है वो हाईली डिस्टिल्ड रहता है, सबसे प्योर वाटर बोला जाता है, बट ये जैसे ही वो जमीन के संपर्क में आता है तो मड से मिक्स हो जाता है, मिट्टी से मिक्स हो जाता है। इसी तरह से हम प्योर आध्यात्मिक जीव हैं, स्पिरिचुअल एंटिटी हैं, परंतु जब हम इस भौतिक संसार से टच होता है तो उसी समय हमारी चेतना कंटेमिनेटेड हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है तो वो भूल जाता है बहुत सारी चीजें, फिर उसको पुरानी चीजें याद दिलानी पड़ती हैं या दिखानी पड़ती हैं, तब वो व्यक्ति को याद आता है कि वास्तविकता में मैं कौन था। तो इसी प्रकार से जीव इस संसार में आज आके भूल चुके हैं, वास्तविकता में वो सभी भगवान के अंश हैं। मोहि वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव जो हैं भगवान के अंश हैं परंतु वो भूल चुके हैं। और इसके बाद ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन के बाद जो सेकंड सेक्शन आता है इसमें थीम में, इस चैप्टर की थीम में सेकंड सेक्शन आता है, कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ मटेरियल नेचर एंड लॉर्ड ऑफ ऑल। भगवान, जब हम भगवान कृष्ण से की बात करते हैं कि भगवान कृष्ण के हम अंश हैं और हम आध्यात्मिक जीव हैं, तो नेचुरली ये प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण कौन है। तो यहाँ पे जब भगवान कृष्ण की बात हो रही है तो वो कोई कृष्ण नाम से कोई व्यक्ति या कोई हिस्टोरिक व्यक्ति या कोई महान राजा उसकी बात नहीं हो रही है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो प्रॉफेट थे, एक बहुत बड़े प्रॉफेट मतलब मैसेंजर जैसे थे, भगवान के मैसेंजर थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कृष्ण तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, दोनों भाइयों को लड़वा दिया। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण सामान्य व्यक्ति थे। भगवद गीता का ये व्यू नहीं है, भगवद गीता बताते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भौतिक और आध्यात्मिक संसार के स्वामी, भौतिक संसार के नियंत्रक। और डायरेक्टली भगवान ने गीता में बताया है ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन। साथ साथ 9वें अध्याय में आता है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है। अध्यक्ष शब्द का मतलब ही होता है कि व्यक्ति डोमिनेट करता है, क्योंकि अक्ष का मतलब होता है आंख और अधि का मतलब होता है नीचे। जैसे हिंदी में भी हम एक फ्रेज देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी आंख के नीचे ये सभी लोग काम करते हैं, दैट मीन्स दोज पीपल आर अंडर दिस पर्सन। तो अध्यक्षता मतलब जो हमारे अंडर में कार्य करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो इस चैप्टर में भी बताया है, इस सेक्शन में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक संसार के स्वामी हैं और सारे जीवों के भी वो हैं, लॉर्ड हैं, सारे जीवों के मालिक हैं। और भगवान ब्रह्म परमात्मा ये दोनों फीचर जो है वो भगवान से निकलते हैं। श्रीमद् भागवत के आधार पर भगवान आध्यात्मिक शक्ति को तीन रूपों में जाना जाता है। लास्ट वीक भी हमने शायद डिस्कस किया था, जो ट्रेन का एग्जाम्पल हमने दिया था। तो तीन फीचर होते हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म जो होता है वो भगवान के शरीर की जो एनर्जी है, शरीर से जो रोशनी निकलती है उसको ब्रह्म बोला जाता है, उसको ब्रह्म ज्योति भी बोला जाता है। आध्यात्मिक संसार में वो ज्योति प्रकाशमान होती है। दूसरा होता है परमात्मा, जिस रूप में भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं। और तीसरा होता है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो कुछ कुछ वैदिक टेक्स्ट, जैसे इस बुक में एक जगह पे टेक्स्ट आता है अहम ब्रह्मास्मि, तो उस टेक्स्ट का बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो संस्कृत में अगर उस टेक्स्ट को देखें तो क्लियरली लिखा जाता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, अस्मि मतलब हूं, अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब ब्रह्म मतलब मैं ब्रह्म हूं। तो अभी यह समझना होगा कि ब्रह्म कहलाता क्या है। ब्रह्म की एक जो हमने डेफिनेशन देखी, भगवान के शरीर से जो रोशनी निकलती है उसको ब्रह्म बोलते हैं। आध्यात्मिक सब्सटेंस को भी ब्रह्म बोलते हैं, जो भी आध्यात्मिक वस्तु है उसको ब्रह्म बोला जाता है। आत्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि भगवान को पर ब्रह्म बोला जाता है। ये दोनों शब्द ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो ब्रह्म आत्मा को बोला जाता है, पर ब्रह्म भगवान को बोला जाता है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि शब्द आता है उसका सिंपल मतलब है कि मैं आत्मा हूं या मैं आध्यात्मिक जीव हूं। तो ये सेंटेंस हमेशा शरीर और आत्मा इसके अंतर को डिनोट करने के लिए बताया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। परंतु अगर इस सेंटेंस का सपोर्ट लेके कोई व्यक्ति ये बोले कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं भगवान हूं, तो यहाँ पे ब्रह्म शब्द का मतलब भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में बोला कि भगवान स्वयं भगवान है, उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः मतलब मुझसे, परतरम मतलब ऊपर, न अन्यत् मुझसे ऊपर कोई नहीं है, किंचित कहीं भी हे धनंजय मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान ने क्लियरली बताया है। और एक्चुअली भगवान कोई पोस्ट जैसे नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है भगवान कृष्ण है। ऐसा नहीं कि अभी वो है बाद में हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। हम हमेशा जीव जो है भगवान का हमेशा दास है। तो अहम ब्रह्मास्मि शब्द का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूँ या मैं आध्यात्मिक जीव हूँ, ये उस शब्द का मीनिंग है। और इस सेक्शन में कृष्ण क्लियर भी बताते हैं कि किस प्रकार से वो भौतिक संसार के कंट्रोलर हैं, भौतिक संसार में सभी को संचालित करने वाले हैं, और संसार में बहुत सारे लोग कंट्रोलर होते हैं, कुछ ज्यादा लोगों को कंट्रोल करते हैं, कुछ कम लोगों को कंट्रोल करते हैं, परंतु हर व्यक्ति कंट्रोलर होता है कुछ कुछ लिमिट तक। इसीलिए सबको कई बार संस्कृत में सभी को ईश्वर बोला जाता है और भगवान को परमेश्वर बोला जाता है। तो भगवान की अध्यक्षता में यह संसार कार्य करता है। जिस प्रकार से अगर कोई कार के अंदर ड्राइवर नहीं बैठा हो तो कार 1 इंच भी नहीं जा सकती है, जिस प्रकार से अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर 1 इंच भी हिल नहीं सकता है, उसी प्रकार अगर भगवान इस संसार को शक्ति प्रदान नहीं करें तो यह संसार खत्म हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो भगवान एक, अगर ये संसार को मशीन जैसे मानते हैं तो भगवान उस मशीन के बटन दबाने वाले मशीन के निर्माता है। तो मशीन अपने आप में कंप्लीट है, परंतु अगर वो मैनिपुलेट नहीं की जाए तो वो कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार से ये संसार एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके पीछे डिजाइनर जो है वो भगवान है। ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, परंतु ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इस ज्ञान को कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। श्री प्रभुपाद जी जब एक बार एक मिस MIT यूनिवर्सिटी में गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का बहुत फेमस कॉलेज है, तो वहां पे जाके उन्होंने यही पूछा था कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो रिसर्च करता है कि जीवित शरीर और मृत शरीर, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या अंतर है। उन्होंने बोला था नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला था फिर आप जो भी सीख रहे हैं वो सब जीरो है, क्योंकि आप सब दुनिया भर की चीजें सीख रहे हैं परंतु आपको यही नहीं पता कि आप कौन है, आप यही नहीं जानते कि मरने के बाद आपका क्या होने वाला है, और आप दुनिया भर की चीजें खोज रहे हो। जैसे सिकंदर ने एक बार बोला था कि अगर कोई व्यक्ति पूरे संसार को भी जीत लेता है और अपने आप से ही हार जाता है, मृत्यु को नहीं जीत पाता है, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि कोई भी संसार की कोई भी यूनिवर्सिटी इस ज्ञान को नहीं सिखाती है। कोई कोई इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कहीं पे ये नॉलेज नहीं दी जाती, जबकि ये मानव जीवन के प्राथमिक नॉलेज है। वैदिक समाज में ये ज्ञान जो था ये नेचुरली नेचुरली लोगों को प्रदान किया जाता था। आप में से किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, उसको म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा, ओके, म्यूट करना होगा। ओके, तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज एक्चुअली भारत में वैदिक सभ्यता में हमेशा गुरुकुल में सिखाई जाती थी, और आध्यात्मिक ज्ञान जीवन का एक बेसिक फाउंडेशन होता था, उसके बिना जीवन नहीं चलता था। परंतु समय के बढ़ते बढ़ते कलयुग के आते आते ये ज्ञान विनाश हो रहा है। भारत में भी इस ज्ञान को लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं और कोई भी इस ज्ञान को टेक्निकल नहीं मानता है, जबकि जब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने भी इस पुस्तक में पढ़ा होगा, तो ये नॉलेज अपने आप में बहुत टेक्निकल नॉलेज है। और ये नॉलेज कब टेक्निकल होती है, कब हम समझ पाते हैं, जब ये नॉलेज हमें कोई अथॉरिटी के द्वारा दिया जाती है। अथॉरिटी मतलब ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं, इंडक्टिव नॉलेज और डिडक्टिव नॉलेज। उसको संस्कृत में बोला जाता है आरोहण पद्धति और अवरोहण पद्धति। तो एक नॉलेज तो होता है जिसमें हम सारा रिसर्च करते हैं और पता करते हैं, और दूसरा नॉलेज होता है कि रिसर्च किया हुआ है, आप जाके टीचर से पूछते हो, टीचर बता देता है। तो भौतिक ज्ञान जो है वो वास्तविकता में इंडक्टिव नॉलेज, रिसर्च करने वाला नॉलेज, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में ऑलरेडी सारे शास्त्रों में नॉलेज दिया हुआ है, और हम जब शास्त्रों को अप्रोच करते हैं, प्रॉपर प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं शास्त्रों को, तो अपने आप आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। नहीं तो लोग जिंदगी भर प्रयास करते हैं परंतु नहीं सीख पाते हैं। शास्त्रों में जो भगवद गीता का जो बेसिक स्टैंडर्ड है, साइंस ऑफ सोल, अगर वैज्ञानिकों से पूछो तो उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, जबकि ये तो पूरा ABCD है आध्यात्मिकता का, ये कोई आध्यात्मिकता की एडवांस बात नहीं है। जबकि वैज्ञानिक पूरा जिंदगी लगाते हैं कैसे मृत्यु को रोका जाए, कैसे दूसरे ग्रहों पर जाया जाए, परंतु यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो कोई यूनिवर्सिटी इसको नहीं पढ़ा रही है, और ये तभी सीखा जा सकता है जब हम प्रामाणिक अथॉरिटी के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करें। और प्रामाणिक अथॉरिटी हमें क्या सिखाती है, प्रामाणिक अथॉरिटी हमें सिखाती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। किस प्रकार से भगवान भगवद गीता के अंतिम अध्याय में बताते हैं कि संसार के सभी सो कॉल्ड धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। हर व्यक्ति कभी ना कभी पाप करता है, जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, परंतु भगवान को समर्पण करने से भगवान उस पाप से मुक्त कर देते हैं। तो सरेंडरिंग टू कृष्णा इज द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इस अध्याय में लास्ट में वही बताया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर प्रामाणिक शिक्षक से सुनता है। प्रामाणिक संप्रदाय, भारत में चार संप्रदाय प्रामाणिक माने जाते हैं जहां पे ज्ञान मिलता है। श्री संप्रदाय जिसमें भगवान ने लक्ष्मी देवी को ज्ञान दिया था, कुमार संप्रदाय जिसमें ब्रह्मा जी के चार पुत्रों को ज्ञान मिला है, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया था, और रुद्र संप्रदाय जहाँ पे भगवान शिव को ज्ञान दिया था। तो ये संप्रदाय अभी भी भारतवर्ष में है, पूरी दुनिया में भी है। अगर कोई इन संप्रदाय में जाके ज्ञान प्राप्त करता है तो वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर भगवान को सरेंडर करके मुक्त होता है। दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग भगवान से रिबेल करना चाहते हैं, भगवान से विद्रोह करके हम यहाँ पे आए, भगवान की हम अथॉरिटी स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इस संसार में भी हम अथॉरिटी स्वीकार नहीं करना चाहते। परंतु नेचर इतना स्ट्रांग है कि अथॉरिटी हमारे ऊपर फोर्स की जाती है, भले ही हम चाहें चाहे नहीं चाहें, परंतु हमारे ऊपर फोर्स होता है अथॉरिटी। और सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जो है वो एक्चुअली देखने के लिए है, वास्तविकता में कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने मन से सारे काम कर ले, उसकी बॉडी भी उसके वश में नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को सरेंडर करके हम इस ज्ञान की फलीभूति कर सकते हैं, ज्ञान को परिपूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले चैप्टर में बताया गया है। मेनली ये पांच पांच वस्तुएं, कृष्ण भावनामृत संस्था का एम, किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो मटेरियल नेचर के कंट्रोलर हैं, और शरीर और आत्मा के बीच का जो ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण है, परंतु दुर्भाग्यवश उसको कोई नहीं सिखा रहा है। और ये ज्ञान प्रामाणिक अथॉरिटी से सुनने से प्राप्त होता है, और भगवान को समर्पण करने से इस ज्ञान की फलीभूति होती है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में डिस्कस होता है कि भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भौतिक संसार से निकलने के लिए स्पेसिफिक क्या करना चाहिए। इस चैप्टर में मेनली कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि इस संसार में भी अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। ये मटेरियल यूनिवर्स, भौतिक संसार जो है वो अलग, बहुत वैरायटी ऑफ प्लैनेट्स से घिरा हुआ है, बहुत सारे स्थान हैं, और श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में वो सब वस्तुएं बताई गई हैं, स्वर्ग लोक और नरक लोक, इन सबका डिस्क्रिप्शन है। इवन इस संसार में भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है। जैसे अभी अभी ओम फिर उन्होंने बताया कि जर्मनी में स्नो हो रहा है, बर्फ गिर रही है, परंतु तो भारत में, गुजरात में जहां हम बैठे हैं, यहाँ पे ठंड खत्म होने वाली है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इवन विद इन यूनाइटेड स्टेट्स भी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह स्टेट में अलग अलग टेम्परेचर है। विद इन भारत के अंदर भी हम देखते हैं इस प्रकार से। तो इवन इस प्लेनेट में भी हम अलग अलग क्लाइमेट ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्स, अलग अलग जो प्लेनेट है, लोक है, उन सभी में भी अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब श्रीमद् भागवतम में जब डिस्क्रिप्शन सुनाया गया, एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते थे कि इस संसार में भी अगर हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जब इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाना पड़ता है तब भी हमें इलीगल एंट्री नहीं कर सकते हैं, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा परमिशन के बाद एंट्री होता है। यौगिक पद्धति के द्वारा लोग जाते हैं, अपने आप को योग के द्वारा क्वालिफाई करके। इसीलिए जो मून हॉक्स बोला जाता है कि मून पे लोग गए और ये सब, नासा भी उसको अभी रिफ्यूट करता है। नासा के आधे साइंटिस्ट बोलते हैं कोई नहीं गया, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर है। साइंटिफिक कम्युनिटी भी अभी बोलती है कि अमेरिका ने आगे निकलने के लिए वो एक पूरा हॉक्स क्रिएट किया, क्योंकि वास्तविकता में योग पद्धति के द्वारा हर जगह जाना पॉसिबल है, ऐसे अपने शरीर से जाना पॉसिबल नहीं है हर क्लाइमेट में, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो जब नरक के बारे में डिस्क्रिप्शन सुना परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम में, और जब उन्होंने सुना कि नरक में कैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग दंड मिलता है, तो नेचुरली उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया। ये एक वैष्णव का लक्षण होता है। तो नेक्स्ट थीम जो आती है वो आती है ग्लोरीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन ऑफ वैष्णव। पूरे पूरे सेक्शन में भगवान फिर बताते हैं कि वैष्णव मतलब क्या कहलाते हैं, डिवोटी का मतलब क्या कहलाता है, भक्त का मतलब क्या कहलाता है। जैसे जीसस क्राइस्ट जब आए थे तो जीसस क्राइस्ट ने लोगों की इतनी खराब आदत देखी और इतना पतित जीवन देखा कि उनके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया उनकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, और लोग इतने पतित थे कि जिन लोगों की वो मदद कर रहे थे वही लोग उनको मारने के लिए तैयार थे। तो वैष्णव नेचुरली पर दुख दुखी, दूसरे को दुख को देख के दुखी होते हैं। वैष्णव के अंदर इतनी कृपा होती है कि वो दूसरे को दुखी नहीं देख पाते हैं। इसलिए जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से सुना कि नरक में इतने सारे दंड मिलते हैं और ये सब होता है, तो परीक्षित महाराज नेचुरली बहुत कंपैशनेट हुए। और वैष्णव का मतलब होता है वांछा कल्पतरु, वैष्णव कल्प वृक्ष के समान भी हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है विश फुलफिलिंग ट्री, ऐसा वृक्ष जो कि सारी इच्छाओं को पूरा करता है। जो भी जैसे गर्मी में आपको ठंड का फल चाहिए तो ठंड का फल मिल जाएगा, और कल्प वृक्ष के सामने जाके आप कोई भी इच्छा करें वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से वैष्णवों को महाभाग भी बोला जाता है, जो कि बहुत एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट हैं। जिन कृष्ण भक्ति जिनको प्राप्त हुई है, जो आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाखों लोगों में से भगवान उनको चुनते हैं। चैतन्य चरितमृत में आता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे संसार में बहुत सारे अनगिनत प्राणी अलग 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 प्लैनेट्स में घूम रहे हैं, परंतु कृष्ण भक्ति को जो प्राप्त हैं वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। गुरु कृष्ण की कृपा से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई। तो 84 लाख योनियां हैं इस संसार के अंदर, जल जल नौ लक्षाणी, 9 लाख योनियां जल में है, और कृमि बैक्टीरिया जो है 11 लाख है, 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में जीव घूम रहे हैं, उसमें से कुछ ही जीवों को भक्ति प्राप्त होती है जो कि सौभाग्यशाली होते हैं, और वो ही कृष्ण भक्ति अभी हमें फ्रीली मिल रही है। तो कृष्ण भक्ति एक ऐसा उपहार है, अगर हम अभी सोचेंगे कि अभी प्रैक्टिस नहीं करना है बाद में करेंगे तो मौका चूक जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो 10 करोड़ का लॉटरी लगा या गिफ्ट मिला उसको, तो ऐसा नहीं कि उसको अभी मिला फिर से मिल जाएगा, अभी जो मिला है उसको ठीक से यूज करना होगा। इसी तरह से अगर कृष्ण भक्ति अभी हमें मनुष्य के जीवन में मिला है तो इसको हमें उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए, जीवन का जो मेन लक्ष्य है। अगर सफल नहीं करेंगे तो हम लूजर रहेंगे, अगली बार पता नहीं मनुष्य जीवन कब मिलेगा और कृष्ण भक्ति मिलेगी कि नहीं, क्योंकि संसार में इतने सारे मनुष्यों में सभी को तो कृष्ण भक्ति का मौका नहीं मिल पा रहा है। हमें अगर मिला है तो हमें पूरी तरह से उसको प्राप्त करना चाहिए, पूरा फायदा उठाना चाहिए, भगवान के नाम का जप करके, शास्त्रों को पढ़ के, अपने आप को आत्मा के जैसा, भगवान के दास के जैसा रियलाइज करके भगवत धाम वापस जाना चाहिए, जो कि जीवन का लक्ष्य है। और वैष्णव ये भी यही चाहते हैं, इसलिए वैष्णव अलग अलग घरों में जाते हैं, किसी ना किसी कारण से लोगों को जाके कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि जब हम घर में जाते हैं तो लोग पसंद नहीं करते, कई बार जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरित करने के लिए जाते हैं तो लोग बाहर से ही भगा देते हैं, चिल्ला के भगा देते हैं, मेरे घर के अंदर मत घुसना। कुछ कुछ लोग क्या है, कुत्ते पीछे भगा देते हैं। एक बार इस प्रकार से हुआ था, मैं एक घर में गया तो वो कुत्ता जो था, कुत्ते को खुला रखा था उन्होंने, शायद अंदर खुला होगा क्या है, मैं जस्ट अंदर घुसा तो कुत्ता एकदम दौड़ के आया मेरी तरफ, और मैं जब भागा वो बाहर जाके देखा तो ऊपर खड़े हुए मकान मालिक, और मकान मालिक जो थे उनकी फैमिली, वो हंस रहे थे कि देखो कैसा भगाया बाबा जी को। तो लोग इस प्रकार से करते हैं। कोई डिवोटी अगर घर घर जाता है भगवान के मैसेज देने के लिए तो लोग उसको परेशान करते हैं, कई बार मारते हैं, भगाते हैं, परंतु तब भी वैष्णव सोचता है कि कैसे हम लोगों को इस भौतिक जीवन नरकीय जीवन से निकाल सके, क्योंकि जिस तरह से अभी भौतिक संसार चल रहा है, जिस तरह से लोग पाप कर रहे हैं, सारे के सारे लोग, मैक्सिमम लोग नरक में जाने वाले हैं। तो महाराज परीक्षित भी इसी प्रकार से वैष्णव थे, जब उन्होंने देखा कि लोग नरक लोक में दुख दुख प्राप्त कर रहे हैं तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति नरक की स्थिति से बाहर जाएगा, कौन सी मेथड्स हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नरक से बाहर जा सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज का भी ये सिम्टम आता है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैं अपने लिए तो उतना चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका नाम लूंगा तो मेरा मेरा आध्यात्मिक लाभ होगा, परंतु मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो कि कभी आपके बारे में, आपके संपर्क में नहीं आते हैं, आपकी ग्लोरीज नहीं मिलती है, तो मैं उनको जाके प्रचार करना चाहता हूँ। जिनसे जिनसे कि आपकी ग्लोरी जिन तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से वैष्णव हमेशा प्रयास करते हैं। इसमें आगे लिखा आता है कि वैष्णव तो नरक भी जा सकते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। प्रहलाद महाराज वो भी बताते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे ज्यादा चिंता नहीं है इस भौतिक संसार में, मैं आपकी वाणी का प्रचार करना चाहता हूँ। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि जो लोग भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं वो भगवान वो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और वैष्णव नेचुरली सोचता है कि संसार के लोग माया सुख में हैं। वो हमारा तीसरा सेक्शन है, मटीरियल प्लेजर इज इल्यूजरी। भौतिक संसार का जो सुख है वो माया सुख है, क्योंकि ये सुख ज्यादातर दिमाग में होता है। जब एक्चुअल में वो सुख आता है तो उतना सुख नहीं मिलता है। भौतिक संसार की किसी भी चीज को आप देखें तो जब माइंड में आता है तब तो बहुत अच्छा है कि मैं एंजॉय करूंगा एंजॉय करूंगा, फिर उतना सुख नहीं मिलता एक्चुअल में। जैसे मैंने देखा लोग मायापुर से कोलकाता से जगन्नाथपुरी जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि जगन्नाथ में बीच अच्छा है, समुद्र का बीच अच्छा है। तो कोलकाता से जगन्नाथपुरी जाते हैं सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक समुद्र में तैरते रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर आके बोलते हैं एक्चुअली मजा जितना सोचा था उतना मजा नहीं आया, क्योंकि भौतिक संसार में उतना सुख है नहीं। भौतिक संसार में सुख नहीं है, केवल दिमाग में सुख है। थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है वो कल्पना से बहुत कम मिलता है। किसी भी सुख को आप देख लीजिए वो इसी कैटेगरी में आता है। तो मटेरियल प्लेजर जो है वो इल्यूजरी है। भौतिक शरीर से जो भी सुख मिलता है वो इल्यूजरी होता है। इल्यूजरी मतलब भ्रामिक होता है और टेम्परेरी होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। भगवद गीता बताता है कि आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि इस भौतिक सुख का आदि होता है, अंत होता है और टेम्परेरी होता है। इसलिए इस भौतिक सुख में लोग नहीं भागते हैं। वास्तविकता में जो सुख होता है वो आध्यात्मिक सुख कहलाता है। उस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? स्थाने स्थित, व्यक्ति जहां भी स्थित है उसको भगवान का भक्ति करना चाहिए। एसेंशियली आध्यात्मिक जीवन ये नहीं बोलता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना है या सभी को सन्यासी बनना है, ऐसा आध्यात्मिक जीवन नहीं बताता है। उसमें बताया जाता है कि आप जहां भी हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करिए। कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, नाम के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करिए और भगवान की सेवा करिए, उनको भोग लगाइए, उनके भक्तों का संग करिए। तो जहां भी आप स्थित हैं वहां आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और केवल हमें ये करना है कि भगवान ने जो आदेश दिया है, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं जिनके द्वारा भगवान का आदेश हमें पता चलता है, भगवान के जो भक्त हमें बताते हैं भगवान के आदेश के बारे में, उसके आधार पर हमें जीवन जीना है। शुरू में थोड़ा कठिन हो सकता है कि शुरू में कई भक्तों को कठिनाई होती है नियम पालन करने में, सुबह जल्दी उठने में भी लोगों को समस्या होती है क्योंकि कल्चर उस प्रकार से नहीं है। परंतु भक्तों के संग में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, धीरे धीरे करने से हो जाता है। हो सकता है किसी को 8 बजे उठने की प्रैक्टिस को सुबह, पर धीरे धीरे अगर वो 15 15 मिनट भी पीछे करेगा तो 15 मिनट, 7:45, फिर 7:30, फिर 7, फिर 6:30, 6, इस प्रकार से हो सकता है। तो ऐसा कठिन नहीं है। अगर भक्त के संग में रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान का नाम करते हैं और भगवान के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो भगवान भी देखते हैं कि ये भक्त मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो भगवान भी उसको कृपा करते हैं। और फिर वो भक्त जो है भगवत भगवत कृपा के कारण वो भक्ति में एडवांस होता है। तो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है ये पूरे भौतिक संसार में हमें सबसे पहले अपने जीवन में पालन करना है, उसके बाद पूरे भौतिक संसार में इस आध्यात्मिक एजुकेशन को हमें प्रोपगेट करना है। जहां हम सीखेंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे। इसलिए पहला स्टेप है हम इसको सीखें, अच्छे से शास्त्रों को अध्ययन करें और उसके बाद हम इसको लोगों को बताएं, क्योंकि ये आध्यात्मिकता जो है मानवता का धर्म है। ह्यूमैनिटी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज द रिलीजन फॉर ह्यूमैनिटी। आध्यात्मिकता जो है वो मनुष्यों का वास्तविक धर्म है। तो जब हम खुद सीखेंगे तब तो हम लोगों को बताएंगे, तब तो लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे चैप्टर में दिया है, सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर डिस्क्राइब करता है लर्निंग टू लव, किस प्रकार से भगवान को प्रेम किया जाए। तो परीक्षित महाराज ने सेकंड चैप्टर में प्रश्न किया था कि ये जो नरक में जो लोग हैं ये कैसे बच सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको टेस्ट करने के लिए बताया कि मृत्यु होने के पहले उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित का मतलब है कि उसको कुछ पुण्य कार्य करना होगा, परंतु परीक्षित महाराज ने बोला कि ये तो परमानेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि पेड़ पेड़ को अगर खत्म करना है तो पेड़ की डाल को काटने से काम नहीं होगा। हो सकता पेड़ को आप ऊपर से पूरा खत्म कर दे, परंतु अगर जमीन के अंदर उसकी जड़ें हैं तो फिर से पेड़ उगाएगा। तो ये जो प्रायश्चित की पद्धति है, तपस्या करना, दया दान देना, यज्ञ करना, ये उसी तरह से है जैसे पेड़ को ऊपर से काटना। तो यद्यपि प्रायश्चित हमें मदद करता है, परंतु प्रायश्चित पूरी तरह से पाप को खत्म नहीं कर सकता। वो पाप के फल को हो सकता है अफेक्ट करे, परंतु पाप की जो इच्छा है वो खत्म नहीं करता। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं, वो परीक्षित महाराज के टेस्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले प्रायश्चित बताया। और फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि नहीं, मुझे ये तो अजीब लगता है, ये मुझे कृपा करके मुझे पूरा बताइए। तो फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान हमारे एटर्नल फादर हैं, भगवान हमारा बीच का संबंध है, आध्यात्मिकता का संबंध है। और भगवान जैसे कोई पिता अपने सभी पुत्रों के लिए बहुत कृपालु होता है, मर्सीफुल होता है, और चाहे पुत्र कमजोर हो, चाहे कैसा भी हो, परंतु पिता कोशिश करता है कि कैसे उसको आगे लाया जाए, कैसे उसका जीवन सफल बनाया जाए। इसी तरह से हो सकता है हम भगवान को रिजेक्ट करके यहाँ पे आए हैं, परंतु भगवान हमारे परम पिता है। भगवान हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे जीवों को वापस उनके घर में, भगवान के धाम में वापस ले जाया जा सके। तो जो कॉन्सेप्ट होता है एटर्नल डैमनेशन, कि कोई व्यक्ति को हमेशा के लिए उसको पतित बना दिया जाता है, हमेशा उसको नरक में या जहन्नुम में डाला जाता है, वो कॉन्सेप्ट भगवद गीता सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में भगवान की कृपा या भगवान की दया मैनिफेस्ट नहीं होती है। भगवान जहाँ हमारे पिता है, तो हर पिता अपने पुत्र के लिए दयालु होता है, और पिता प्रयास करता है, भगवान स्वयं आते हैं, भगवान अवतार लेके स्वयं इस संसार में आते हैं और अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने मैसेज को भेजते हैं, गीता को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, मैसेंजर्स भेजते हैं, केवल इसीलिए जिससे कि जीवों का जो कृष्ण प्रेम है, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, वो जागृत हो सके। क्योंकि जीव का नेचर है सेवा करना, हम सभी भौतिक संसार के नियमों में बंधे हुए हैं, हमारा हमारा शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, बाकी चीज तो दूर का, हमारा खुद का शरीर भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे हमें लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, यंग एज चल रहा है, परंतु एकाएक अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक हो जाए, तो व्यक्ति फिर वो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है, हाथ हिलता भी नहीं है, व्यक्ति इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है। तो हमारा नेचर सेवा करना है, और ये श्योर है कि ये भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, ये जमीन पे गिरेगा, इसको जलाना होगा, और आत्मा शरीर छोड़ देगी। तो जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, तब तक हमें इस भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से बाहर कृष्ण की शरण में लेना चाहिए, जिससे कि जब हमारे ये शरीर खत्म हो, तब हम अपने धाम, अपने घर वापस जा सके। तो कोई व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि वो कंट्रोल्ड नहीं है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा रहा, तो ये उसका झूठ है। हर व्यक्ति नियंत्रित है, कोई हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई है, सभी जीवों को कर्म के नियम नियंत्रित करते हैं, देवता नियंत्रित करते हैं जीवों के हर क्रियाकलाप, यमराज के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो हम पाप करते हैं उसका फल मिलता है। कर्म का नियम इसी प्रकार से है कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। उसी को न्यूटन ने अपने नए शब्दों में, साइंटिफिक शब्दों में बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, परंतु एक्चुअल में वो कर्म का नियम है, कर्म का फल मिलता है। तो इसीलिए फिर आगे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि भगवान, व्यक्ति को ये कन्विंस होना चाहिए कि भगवान इंजॉयर है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षते। जो व्यक्ति ये जानता है कि भगवान इंजॉयर है, भगवान मालिक है और कंट्रोलर है, वो व्यक्ति संतुष्टि को, शांति को प्राप्त करता है। तो किस प्रकार से भगवान सभी वस्तुओं के मालिक हैं, जैसे हम जिस घर में रहते हैं, उस घर के जो एलिमेंट्स हैं, पत्थर मिट्टी, वो सब हमने नहीं बनाया, वो सब नेचर से हमने लिया है, और नेचर भगवान के अंडर में कार्य करता है। अभी हम सोचें कि ये घर हमारा है, परंतु कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो हाईवे बनाती है, तो बोलते हैं ये घर तोड़ना पड़ेगा आपको, इसकी जगह पे दूसरा घर, दूसरी जगह दिया जाए। तो एक्चुअली हम भी घर के मालिक नहीं है, गवर्नमेंट मालिक है। अभी गवर्नमेंट भी एक्चुअल मालिक नहीं, गवर्नमेंट तो हर 5 साल में बदल जाती है। तो इवेंचुअली ये संसार की जो वस्तुएं हैं, धरती पे जो कुछ भी है, सब भगवान उसके मालिक है। हम केवल दिमाग में सोचते हैं कि हम मालिक हैं, हम एक्चुअल में केयर टेकर हैं बस। जैसे कोई रेलवे की गाड़ी में जाते समय अगर कोई विंडो सीट के लिए लड़ाई करता है, कई बार ट्रेन में मैंने देखा है लोग विंडो सीट के लिए लड़ाई करते हैं, हाथापाई हो जाती है, थप्पड़ मार देते हैं कि मुझे विंडो सीट पर बैठना है। जब स्टेशन आता है तो दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वो सीट वहीं पर रह जाती है। इसी तरह से इस संसार में जमीन के लिए लड़ाई होती है, भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, मारा काट भी हो जाती है, अल्टीमेटली दोनों मर जाते हैं और जमीन वहीं पर रह जाती है, फिर कोई नए दो लोग आते हैं वो लड़ाई करते हैं। तो वास्तविकता में संसार के रिसोर्सेस भगवान के हैं, हमें जितने समय के लिए मिले हैं उतने समय के लिए हमें उसको ऐसा उपयोग करना चाहिए कि हम भगवान को ऑफर कर सकें प्रेम के साथ, नहीं तो मरने के बाद तो वो चले ही जाएगा हमारे पास। चाणक्य पंडित एक जगह बताते हैं, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति धनानि जीवितम चैव पर अर्थे प्राज्ञ उत्सर्जित। जो बुद्धिमान लोग हैं वो मृत्यु के पहले अपनी वस्तुओं को भगवान को समर्पित कर देते हैं, नहीं तो मृत्यु के बाद तो भगवान ऑटोमेटिकली ले लेंगे। अगर मृत्यु के पहले हम अगर भगवान को समर्पण करेंगे, सेवा करेंगे, तो कम से कम ये होगा कि हमने अपनी तरफ से भगवान की सेवा की, नहीं तो मृत्यु के बाद तो ऑटोमेटिकली भगवान लेने वाले हैं। तो जैसे एक पुजारी था, वो कुछ प्रसाद लेके जा रहा था, जो ममरा होता है वो लेके जा रहा था, तो जब जोर से हवा चली तो ममरा हवा में उड़ गया, और जब वो नहीं पकड़ पाया तो उसने बोला गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय को दे दिया। तो ऐसा नहीं कि अभी हम नहीं कर पा रहे तो भगवान को देंगे, मरने के बाद तो भगवान ऑलरेडी लेने वाले हैं। तो जो बुद्धिमान है वो अपने क्रियाओं को भगवान को समर्पित करता है, सेवा करता है, भगवान की नाम का जप करता है, भगवान के विग्रह की सेवा करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भक्तों की सेवा करता है, और भगवान के लिए भोग बनाता है, भगवान की वाणी का प्रचार करता है प्रेम के साथ। जो व्यक्ति ये सब करता है उसके अंदर धीरे धीरे भगवत प्रेम, भगवत चेतना डेवलप हो जाती है। तो उसके लिए बहुत कन्विंस होना जरूरी है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण मालिक हैं सभी वस्तुओं को, भगवान नियंत्रित करते हैं और भगवान सभी को एंजॉय करते हैं, और भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र भी हैं, हमारे हृदय के सबसे क्लोज हैं। परमात्मा जो है वो हृदय में सबसे पास में है, तो हमारे सबसे क्लोज मित्र हैं भगवान, केवल हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। भगवान हमारे सबसे पास में है और हम उनसे दूर भाग रहे हैं, हम केवल अपना अपनी जो दृष्टि है वो भगवान की तरफ मोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। भगवत गीता में उसको सुहृद बोला जाता है, सुहृद का मतलब जो हृदय के बहुत करीब है। तो अगर हम ये रियलाइज करेंगे तो हम भगवान को प्रेम करना सीख सकते हैं। तो मैं जस्ट रिवाइज करूंगा इन तीन चैप्टर्स को। पहले चैप्टर में हमने देखा था भगवान कृष्ण के द्वारा कैसे प्रेम प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बिगनिंग में हमने देखा था कृष्ण भक्ति संस्था का, कृष्ण भावनामृत संस्था का गोल क्या है, लोगों की वास्तविक चेतना को रिवाइव करना। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान संसार के मालिक हैं और भौतिक संसार उनके नियंत्रण में कार्य करता है, और ये ज्ञान भौतिक संसार में कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब ये ज्ञान हम प्रामाणिक अथॉरिटी से स्वीकार करते हैं तब हम भगवान को सरेंडर करते हैं, ये हमने पहले चैप्टर में देखा था। दूसरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि इस संसार में अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में, और जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे कि नरक लोक में कैसे दंड मिलता है तो वो दुखी हुए, उन्होंने अपने गुरु से पूछा। और उसके बाद हमने देखा था वैष्णवों के गुण, वैष्णव जो है पर दुख दुखी होते हैं, भौतिक संसार के लोगों को बचाना चाहते हैं, वैष्णव महाभाग भी होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती है। तो परीक्षित महाराज ने फिर पूछा कि कैसे इनको बचाया जाएगा। उसके बाद प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल हमने देखा था कि भौतिक संसार कैसे भ्रामक है और टेम्परेरी है, और जो व्यक्ति जहां पे स्थित है वहां पे रह के उसको भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के आदेशों के आधार पे कार्य करना चाहिए, और इस आध्यात्मिक ज्ञान को रिवाइव करना चाहिए, रिवाइव मतलब जीवन में अप्लाई करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। इसके बाद तीसरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि अलग अलग प्रोसेसेस हैं प्रायश्चित की, जो कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और परीक्षित महाराज उनको रिजेक्ट करते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं, और किस प्रकार से भगवान और हमारे बीच में पिता पुत्र का संबंध है, और भगवान कृपा के द्वारा हमें इस संसार से वापिस ले जाना चाहते हैं, और क्योंकि हम इस संसार में बंधे हुए हैं अपने कारण वापिस नहीं जा सकते, इसलिए भगवान हमें मदद करते हैं और संसार में वापिस लाना चाहते हैं, संसार से वापिस लाना चाहते हैं। इसलिए हर भक्ति का, हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि इस तथ्य में कन्विंस रहे कि भगवान मालिक हैं, इंजॉयर हैं और मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, और अपने जो भी क्रियाकलाप है भगवान को समर्पण करें। इसकी शुरुआत होती है भगवान के नाम लेने से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप अगर उसका रेगुलर जप करना प्रारंभ करें, हर दिन उसका चैंटिंग करना चालू करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। भगवान कृष्ण के प्रति आपकी जो चेतना है वो अपने आप डेवलप होना चालू होगी। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे और भगवत नाम लेते रहेंगे तो श्योरली आपको भगवान गाइड करेंगे, आपकी आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी। ओके, तो ये 3 चैप्टर में इतना बताया गया है। आगे के चैप्टर्स जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में उनके आगे डिस्कस करेंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं इन चैप्टर्स के आधार पर। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर रेज हैंड कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न पूछना है तो।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
हरे कृष्णा।
ये अटोनमेंट की आपने बात की, तो अगर हमारी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ ऐसी गलती हो जाए तो अपने आप शास्त्र में से देख के फिर अटोनमेंट करना, या फिर किसी वैष्णव से कंसल्ट करके, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रायश्चित होते हैं कि जो अभी पॉसिबल भी नहीं हो पाते तो।
हाँ, तो बहुत अच्छा है कोई वैष्णव के संपर्क में रहें, उनसे हम पूछें कि ऐसा मिस्टेक हो गया है। और क्योंकि अपने हिसाब से शास्त्र में देखने में बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम किस प्रकार से उसको समझ पा रहे हैं और किस कंडीशन में वो बताया गया है, इसलिए कोई वैष्णव से पूछना अच्छा है। वो उनको मैटर बता सकते हैं और वो हमें गाइड कर सकते हैं किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है,
ठीक
ओके, यस, और अनम्यूट किया है। आपको कुछ पूछना है प्रभु? अरोड़ा प्रभु, यस, कोई प्रश्न है आपको? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, पता नहीं, आवाज आप बोल रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रही।
कि भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा ही क्यों है?
हाँ, आपका नाम क्या है?
कृष्ण चैतन्य।
कृष्ण चैतन्य, बहुत अच्छा नाम है। भगवान ने इस धरती पे हमें भेजा क्यों है? एक्चुअली हमने भगवान से, जैसे कई बार आपके साथ होता है कृष्ण चैतन्य, आपके पिताजी से आप कुछ, आपको कोई खिलौना चाहिए, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, सबसे अच्छी क्या लगता है आपको?
मेरे को कुछ कुछ अच्छा लगता है देखने में।
देखने में अच्छा लगता है। सपोज आपको कोई एक चीज अच्छी लगती है और आप अपने पिताजी से बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए है, वो ये चीज चाहिए है, और एकदम लड़ने लगते हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं रोने लगूंगा और भाग यहाँ वहां लूटने लगते हैं, तो फाइनली पिताजी क्या बोलते हैं कि ठीक है दे देते हैं, होता है कि नहीं?
होता
अगर
है
बहुत ज्यादा
भाई।
जिद करते हैं तो पिताजी दे देते हैं। इसी तरह से हम भगवान के साथ नहीं रहना चाहते थे, भगवान से अलग रहना चाहते थे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मेरा बंटवारा कर दो। तो भगवान की इच्छा नहीं थी हमें यहाँ भेजने की, परंतु हमारे भगवान से अलग होके भोग करने की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा। तो ऐसा नहीं कि भगवान चाहते थे कि हम यहाँ पे रहें, इसलिए तो भगवान हमें यहाँ पे आते हैं बार बार याद दिलाने के लिए कि चलो मेरे साथ वापस, इस संसार में क्या कर रहे हो। क्योंकि भगवान हमें यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, हमारी इच्छा थी भगवान को रिजेक्ट करके अलग से भोग करने की, इसीलिए हम यहाँ पे आए। आप कहाँ, कौन से, बड़ौदा में रहने वाले हैं कृष्ण चैतन्य? हैदराबाद।
हैदराबाद में क्या?
ओ बहुत अच्छा है। पिताजी कहाँ हैं आपके?
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे हैं। कृष्ण चैतन्य बहुत अच्छा नाम है।
यू प्रभु जी।
आप हैदराबाद एबिट्स मंदिर में कनेक्टेड हैं प्रभु?
जी प्रभु जी, उधर जाते हैं मंदिर में। थैंक
ओके, नाइस,
यू प्रभु जी।
थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी कृष्ण चैतन्य का अच्छे से देखभाल करिएगा। कृष्ण चैतन्य को आपका जिम्मेदारी है उसका टेक केयर करके उसको भगवत धाम तक ले जाना।
चल रहा है प्रभु जी, कोशिश। हरे
ठीक है,
कृष्ण,
ओके। अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाकी जो।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे
ओम
कृष्ण,
ही,
यस
यस
प्रभु।
यस प्रभु जी, आपने वैसे काफी अच्छा एलोबरेट किया है, सो थैंक यू वेरी मच। एट फर्स्ट दैट आई थिंक योर एलोबरेशन वाज क्वाइट गुड अबाउट ऑल द टॉपिक्स। तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी, हालांकि आपने बता दिया है फिर भी मैं एक बार और थोड़ा सा आप एलोबरेट करें। इसमें प्रायश्चित के ऊपर काफी बोला गया है चैप्टर के सेक्शन में कि प्रायश्चित करना चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है
हाँ
और आपने भी अभी बताया है, काफी अच्छा से डिस्क्राइब किया है।
हाँ
बट
फिर ये भी बताया गया है कि प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग मतलब आप जो जड़ से ही अगर हम लोग दोबारा से वो रिपीट करेंगे वही चीज ना, जैसे एक चोर को अगर जेल में डाल दो तो वो चोर अगर फिर जेल में से निकलने के बाद दोबारा से चोरी करेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका जेल में डालने का। और एक डॉग का भी एग्जाम्पल दिया है कि डॉग जैसे उसको एक सिंहासन पे बिठा दो, बहुत फैसिलिटीज दो, बट फिर भी अगर वो एक शूज देखेगा, एक 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 जूता देखेगा तो उसको उसकी तरफ भागेगा लपके लपकने के लिए। तो आपने बहुत, हाँ, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो सिमिलरली प्रभु जी, जैसे हम लोग अगर प्रायश्चित कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो प्रायश्चित के लिए उतना स्ट्रेस नहीं दिया है एक्चुअली। आई थिंक देर इज नो स्ट्रेस फॉर प्रायश्चित ना, बट आई थिंक जो हम लोग जैसे हम लोग सिन करते हैं या पाप होते हैं, पाप तो होते ही हैं, हम लोग भौतिक प्रकृति में काम करते हैं, तो हम लोग बिना प्रायश्चित करे प्रभु जी कैसे दूर रह सकते हैं उन पापों से? मतलब उसमें बताया गया कि तीन गुण हैं जो प्रकृति के, हम उनसे डिसोसिएट हो जाएं, अलग होके काम करें, उनसे उनके इन्फ्लुएंस में ना रहें, तीन गुणों के, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो आप प्रोसेस थोड़ा सा और समझाओगे प्रभु जी कि कैसे प्रकृति के जो तीन गुण हैं उसके इन्फ्लुएंस से कैसे बाहर निकले, हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो करें उसके लिए, सिंपल प्रोसेस।
एक्चुअली प्रभुपाद जी का एक लेटर है इसके संबंध में, कि कृष्ण भावनामृत का जो प्रायश्चित है, रिपेंटेंस जो कृष्ण भक्ति में है, वो भगवान का नाम का जप है। भगवान के नाम का जप कोई भक्त अगर करता रहता है ध्यान से और पाप से दूर रहने का प्रयास करता है, तो इवेंचुअली उसके पाप का फल खत्म हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि हम पाप करें फिर सोचें कि भगवान का नाम करके वो खत्म कर लेंगे, वो एक अपराध कहलाता है। परंतु अगर हम सिंसियरिटी से पाप से दूर आने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति की प्रोसेस चालू रखे हैं, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं लेटर कि भक्ति की जो पद्धति है वो चालू रखते हैं, नाम का जप और श्रवण कीर्तन और भगवान की सेवा, तो अपने आप जो पाप है उन पापों का फल खत्म होता जाता है। अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति का फॉर्मूला है, भक्तों के संग में रहना, शास्त्र का अध्ययन करना, नाम का जप करना और प्रसाद ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना, भक्तों की सेवा करना, ये प्रोसेस अपने आप में पाप को खत्म कर देती है। इसलिए अलग से कोई प्रायश्चित रखा नहीं है वैदिक शास्त्रों में कि अलग से कोई यज्ञ करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भक्ति की प्रोसेस अपने आप में प्रायश्चित का कार्य करती है, और प्रायश्चित से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये तो अज्ञान जो कि पाप का कारण है, वास्तविकता में पाप का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता, प्रारब्ध अप्रारब्ध, कूट बीज, पाप, ये पाप का एक अलग पूरा वृक्ष है, पर भक्ति प्रोसेस जो है उस पूरे वृक्ष को खत्म कर देती है। कर्म फल कर्म करने की पाप करने की इच्छा तक को खत्म कर देती है। इसलिए कोई सेपरेट प्रायश्चित नहीं बताया जाता है भक्ति के साथ। व्यक्ति सिंसियरिटी से भक्ति करता है और प्रयास करता है तो अपने आप वो प्योरिफाई हो जाता है। ओके
यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा। यस
ओके
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन इसमें से अराइज हुआ कि जैसे कि आपने बोला कि पाप जो करने की इच्छा वो खत्म हो जाती है, तो कई सारी हैबिट्स होती है जो क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल कि गुस्सा करने की या फिर ऐसी कई सारी की जो हमारी इच्छा तो नहीं होती बट बाय डिफॉल्ट तब क्या होता है कि हो जाता है। कई लोगों के ऐसी हैबिट्स होती है, पर्टिकुलर मैं अपनी बताऊं तो कभी कभार ऐसा होता है ना, तो गुस्सा बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, तब उस टाइम इतना कॉन्शियसनेस इतनी नहीं हो पाती, तो उसको कैसे ओवरकम करें।
एक्चुअली ज्यादातर जो बैड हैबिट्स हैं वो हमारे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। जैसे अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा था कि कई बार ऐसा लगता है कि हम गलत कार्य जो है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं, ऐसा लगता है कोई हमें फोर्स कर रहा है, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था। तो भगवान यही बताते हैं कि काम और क्रोध, काम ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्भव है। काम भावना रजोगुण से प्राप्त होती है और वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है जो कि तमोगुण में आता है। तो भक्ति की प्रोसेस जो है अपने आप व्यक्ति को सत्वगुण में लेके आती है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलना होगा, हमें सत्वगुण में आना होगा। सत्वगुण में आने के लिए, सत्वगुण की लाइफ स्टाइल भी भगवद गीता में ही बताई गई है 14वें अध्याय में कि किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए। एक्चुअली 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय, 14, 17, 18, तीन जगह पे बहुत सारे आइटम्स दिए हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में क्या क्या आइटम होते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, भोजन की कौन कौन सी चीजें होती हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, स्थान कौन कौन से होते हैं, दिन का समय किस प्रकार से होता है। तो अगर वो अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बहुत, उस अध्याय को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्वगुण में क्या क्या वस्तुएं हैं। तो हमें अपना जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए कि सत्वगुण में हम प्रयास कर सकें और भक्ति की प्रोसेस चलती रहे, तो अपने आप वो जो हैबिट है वो कमजोर हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में खत्म होगी, परंतु अगर लगातार चलता रहेगा तो खत्म हो जाएगी। जैसे आप देखें पंखा जो है वो पंखा चलता रहता है, परंतु अगर उसका स्विच ऑफ कर दो तब भी कुछ देर तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बंद हो जाता है, कुछ देर तक चलता रहता है, उसके बाद बंद हो जाएगा क्योंकि उसका स्विच ऑफ हो चुका है। इसी तरह से भक्ति प्रोसेस चलती रहेगी तो धीरे धीरे बैड हैबिट्स की फ्रिक्वेंसी कम होते 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 एक दिन आएगा कि खत्म हो जाएगी।
ओके ओके थैंक यू।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट जब चार चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद शायद 3 चैप्टर बाकी हैं, 3 या 4 चैप्टर बाकी हैं इस पुस्तक के। तो जब वो कंप्लीट होंगे उसके बाद हम फिर से सेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।